जय श्री साई राम। साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। कभी आपने ये कथा सुनी होगी, एक डाकू जंगल में जाकर जो भी राहीगर वहां से गुजरते थे उनको लूट लेता था। लोग डरते थे वहां जंगल से गुजरने से। आज के जमाने में आप कह सकते हैं हाईवे रॉबर, एक बार वहां से नारद जी गुजर रहे थे, उस डाकू ने उन्हें पकड़ लिया। बोले साधु, जो भी धन संपत्ति तुम्हारे पास है मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। नारद मुनि ने समझाया, भाई तू ये क्या कर रहा है, मैं एक साधु हूं, मेरे पास केवल एक कमंडल है, उसमें थोड़ा जल है, और क्या है मेरे पास। बच्चे ये बता, ये काम तू करता क्यों है, तुझे पता नहीं ये पाप है, ये बुरा काम है। अरे साधु, ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करो, डाकू बोला। हाथ में तलवार थी या चाकू था, मारने की धमकी दे रहा था डाकू। साधु के पास कुछ था नहीं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शायद तानपुरा कहते होंगे उसको, जो नारद मुनि बजाया करते थे, एक कमंडल होगा। नारद जी बोले, बेटा एक बात बताओ, तू ये काम करता क्यों है, पाप पुण्य की परिभाषा समझाई। डॉक्टर बोला, ऐसा है कि मेरे को अपना पेट पालना है, अपने घर वालों का पेट पालना है, मेरे बूढ़े माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, साथ बोला वो ठीक है, तो उनका पेट पालना चाहता है, उनका लालन पालन करना चाहता है, पोषण करना चाहता है, लेकिन ये जो पाप जो कर रहा है, क्या वह इस पाप के भागीदार बनेंगे। सरल सी बात है, क्या वह इस पाप के भागीदार बनेंगे। डॉक्टर बोला, क्यों नहीं बनेंगे, ये काम मैं करता किसके लिए हूं। नारद मुनि बोले, ऐसे करो बेटा, घर जाओ ना, पूछ के आओ, मैं वेट करता हूं, इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे यहां खड़ा हूं। डाकू ने कहा, ये जो नारद जी हैं, वो तो नहीं जानते थे नारद जी हैं, जो साधु सामने हैं, मेरे को मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने उस साधु को पेड़ से बांध दिया, ठीक है मैं तुम्हें बांध के जाता हूं, कहीं तो भाग ना जाओ, पता करके आता हूं। कई बार जीवन में ऐसा होता है, कोई एक छोटी सी बात आप बोलते हैं, आपके दिमाग में जाकर लग जाती है, या आप विचारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साधु ने इतना ही तो कहा था, भाई तू जो पाप का कर्म कर रहा है, क्या तेरे घर वाले इसके भागीदार बनेंगे। साधारण सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल क्या तुम अकेले भोगोगे या तुम्हारे घर वाले भी भोगेंगे जिनके लिए तुम कर रहे हो। डाकू के बात पे बात लग गई, डाकू का नाम था रत्नाकर। उल्टे पाओ दौड़ता हुआ घर गया, अपने घर वालों से पूछा, माता पिता से प्रश्न किया, भाई मुझे बताइए, मैं ये चोरी करता हूं, डकैत डालता हूं, करता हूं, डाकूगरी का काम करता हूं, इस कर्म का जो मुझे फल मिलेगा क्या आप इसके भागीदार बनेंगे। माँ बाप ने साफ मना कर दिया, नहीं बेटा, तुम्हें किसने बोला गलत काम करूं, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम अपने माता पिता का लालन पालन करो, उनका पोषण करो, उनकी देखरेख करो, उनकी देखभाल करो, दैट्स इट। रत्नाकर दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास गया, अपनी पत्नी से यही प्रश्न किया कि मैं जो चोरी करता हूं, गलत काम करता हूं, क्या तुम इस कर्म का भागीदार बनोगी। पत्नी ने साफ मना कर दिया। थोड़ी ठेस पहुंची, बच्चों ने मना कर दिया, माथा बुखला गया, सदमा लगा हृदय को, मैं सुबह से रात तक जाके जंगल में इंतजार करता हूं, वन में बैठा रहता हूं, अपने मन को मार के, अपनी आत्मा को मार के ये काम करता हूं, लोगों को लूटता पाटता हूँ और कोई भी घर वाला जिनके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ कोई भी मेरे कर्म का भागीदार बनने को तैयार नहीं हो रहा. अमेजिंग. उल्टे पांव दौड़ता हुआ वन की ओर गया. वहां जाके नारद मुनि जो साधु के रूप में थे उनके वेश में थे उनके चरणों में गिर पड़ा. महाराज मुझे क्षमा करें मेरा उद्धार करें. उद्धार करें मेरा प्रभु. आज तक मैं ये सोचता रहा मैं जिनके लिए ये काम कर रहा हूं वो मेरे कर्मों का भागीदार बनेंगे वो प्रसन्न होंगे लेकिन सबने मना कर दिया. अब मुझे समझ आ गई है मेरे कर्मों का फल मुझे अकेले ही भोगना होगा. उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर ही है. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन कर्मा. आई विल हैव टू गो टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट. नारद मुनि ने कहा बेटा एक काम करो तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूं तुम उसको जपते रहना उससे तुम्हारा कल्याण होगा. नाम दिया या मंत्र दिया राम राम राम. खाली राम राम जपते रहना. वह डाकू पढ़ा लिखा तो था नहीं कभी मंत्र को उच्चारण नहीं किया था कारणवश मंत्र को भूल गया. वहीं वह बैठ के राम राम की जगह धीरे धीरे गलत बोलने लग गया. मरा मरा भूल गया क्या मंत्र दिया था थोड़ी देर में याद नहीं रहा. याद आया मरा बोला था शायद मरा 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 बोलते हैं बार बार. आप बोल के देखिए क्या देखिएगा कोशिश कीजिएगा मरा मरा राम राम राम. आप मरा बोलते हैं मरा 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 राम 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 लेकिन उल्टा होके राम राम बन जाता है. काफी अरसे के बाद वह डाकू तो वहां पर बैठा मगन ही हो गया समाधि में चला गया. जहां तक कि उसके शरीर के ऊपर दीमक लग गई. काफी अर्थे के बाद जब वहां से नारद मुनि वापस जा रहे थे उन्होंने देखा कि एक यहां पर ढेर लगा हुआ है मिट्टी का दीमक का और उसमें से एक धमनी गूंज रही है. एक वाइब्रेशन आ रही है बाहर. एक एनर्जी आ रही है एक ऊर्जा आ रही है एक शक्ति आ रही है. वहां का प्रभा मंडल वहां का औरा दूर दूर तक प्रवाहित हो रहा है. वहां पहुंचने से मन को शांति मिलती है. मन को आनंद मिलता है सुकून मिलता है. नारद मुनि एक ही दृष्टि में पहचान गए ये तो वही है डाकू रत्नाकर जिसको मैंने मंत्र दिया था राम. वो आज तक जाप कर रहे हैं. इतना शुद्ध बुद्ध में खो गया है समाधि लग गई है. उन्होंने उस मिट्टी के ढेर को जो कीड़े मकोड़े होते हैं कीड़े छोटे जिसे बोलते हैं संस्कृत में उसका शब्द है मेरे ख्याल से अंग्रेजी में बोलते हैं टेमेटाइट. संस्कृत में उसको बोलते हैं बाल्मीक. उन्होंने उसको तोड़ा अंदर से एक पुरुष निकला उसको नाम दे दिया बाल्मीकि. उन्होंने राम नाम की महिमा को लिखा जिसका नाम है वाल्मीकि रामायण. सदियों पहले हजारों वर्ष पहले आज भी हम उस रामायण का अध्ययन करते हैं, उस पे शोध करते हैं, उस पे रिसर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें से हम लेसन लेते हैं हाउ टू लिव लाइक लाइक ए ह्यूमन बीइंग. विचार कीजिएगा आप. सबसे पहली बात यह, रामायण की ओर बढ़े या उसकी थोड़ी बहुत और चर्चा करें, एक प्रश्न है. आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका अपना दायित्व मालूम है, कल्चर्ड हैं, संस्कारी हैं. प्रश्न एक सीधा सा है, क्या आपने कभी किसी साधु के दर्शन किए हैं? क्या आपने कभी किसी सन्यासी के दर्शन किए हैं? क्या कभी आपने किसी के दिव्य प्रवचन सुने हैं? कभी जीवन काल में ऐसा हुआ है कि आप मंदिर में गए हों या किसी कथा में गए हों, किसी ब्राह्मण की, किसी पंडित की, किसी पुजारी की, किसी सन्यासी की, किसी साधु की कथा को सुना हो, प्रवचन को सुना हो, कोई एक शब्द आपको लग गया हो दिल में कि जीवन कैसे जीना चाहिए? रत्नाकर एक हाईवे रॉबर था, आज की भाषा में बोला जाए तो. उन्हें एक बार एक साधु मिला, साधु की एक बात सुनी, उनका जीवन बदल गया. आप अपने जीवन में कितनी बार साधु सन्यासियों को मिले हैं, हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? एक डाकू परिवर्तित हो गया एक साधु में, हाईवे रॉबर गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेज. और आज भी हम अपने जीवन में हजारों कथाओं को सुन के, हजारों वाणियों को सुन के, हजारों टीवी सीरियल देख के, हजारों पिक्चरें देख के, मूवीज देख के, मंदिरों में बार बार माथा टेक के, हजारों प्रवचनों को सुन के, साधु संतों के पांवों को छू के, उनको घर में आमंत्रण देकर, उनका आदर सत्कार करके, उनके चरणों को छू के, उनके चरणों की छाप को घर में रख के, उनकी तस्वीर को घर में रख के, उनके ऑडियो टेप, वीडियो टेप, वीडियो क्लिप, व्हाट नॉट, सब कुछ होने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं. हमारे से तो वो डाकू अच्छा. विचार कीजिएगा. आज भी हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, उसके बाद संत तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखी, नाम रख दिया रामचरितमानस, जिसमें राम की कैरेक्टर के, चरित्र की व्याख्या है. विचार कीजिएगा जरा आप. सोचने की बात है. हम राम का जन्मदिवस कैसे मनाते हैं? 8-9 दिन तक राम की गाथा गाते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, हवन करते हैं, और राम नवमी के दिन को 12 बजे जब राम का जन्म निर्धारित किया जाता है, होगा आज, उस समय हम झूलना झूलते हैं. क्यों जी? प्रसाद खा के घर आ जाते हैं, दैट्स इट. हो गई रामनवमी, सेलिब्रेशन इज ओवर। लेकिन हमने कभी राम की चरित्र को रती भर भी अपने जीवन में नहीं उतारा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विचार कीजिएगा। कहा जाता है ये चार जो भाई हैं, चार वेद हैं, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चलो इसको ही बात कर लेते हैं आज, जरा विचार विमर्श करते हैं। राम धर्म के प्रतीक हैं, लक्ष्मण अर्थ के, भरत काम के और शत्रुघ्न मोक्ष के। मान लेते हैं इसे। आपने देखा हमारे जो पुरुषार्थ है, सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म। इन्हें कहा जाता है फोर गोल्स ऑफ लाइफ। धर्म का अर्थ है राइट कंडक्ट, अर्थ का अर्थ है मेटीरियल गेन, काम का अर्थ है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, मोक्ष का अर्थ है लिबरेशन। जरा सोचिए, पल भर के लिए सोचिए, विचार करना जरूरी है। विचार करना अनिवार्य है। कहा गया कि सबसे पहले हमारे जीवन में हमें धर्म को जानना है कि मेरा धर्म क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का जन्म अगर हिंदू परिवार में हुआ तो उसका धर्म हिंदुइज्म है, मुस्लिम परिवार में हो तो मुसलमान है, इस्लाम फॉलो करेगा, कोई ईसाई के घर जन्म हो तो क्रिश्चियन बन गया। नहीं, धर्म का अर्थ रिलीजन से मतलब नहीं है। धर्म का अर्थ है आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, योर फैमिली, सिबलिंग, वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, नेबर्स, सोसाइटी, कंट्री, नेचर, टुवर्ड द सेल्फ। आपका धर्म क्या है? अगर आप पुत्र हैं तो आपका धर्म क्या है? भगवान राम ने यह उदाहरण आपको दिया है, एक उदाहरण स्थापित किया है। उन्हें कहा गया भाई कल तुमको यहां का राजा बनाएंगे, राज्याभिषेक होगा, जब अचानक कहानी बदल गई और 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए, उन्होंने उफ नहीं करी, तस्य मस नहीं हुए, चेहरे की मुस्कान समाप्त नहीं हुई, धर्म क्या है? मेरा धर्म एज ए सन, एज ए पुत्र, मेरा धर्म क्या है माता पिता के लिए? मेरा धर्म क्या है अपने पत्नी पति के प्रति, बच्चों के प्रति? फिर पीछे पीछे राम के चलते हैं लक्ष्मण, जो अर्थ है, जो मटेरियल गेन है। कहते हैं आप जो भी धन संपत्ति कमाते हैं उसका प्रयोग कहां होना चाहिए? राम की ओर, अर्थात धर्म की ओर। जो भी आप पैसा कमाते हैं उसका प्रयोग धर्म में लगाना होगा, धार्मिक कार्यों में, टू अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी, टू अपलिफ्ट द कॉन्शियसनेस, टू मेंटेन द लव एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। धर्म क्या है और जो धन संपत्ति कमाई है, जो मेटीरियल गेम है, जो अर्थ कमा रहे हैं, जीवन का एक लक्ष्य है, एक गोल ऑफ लाइफ है, उसको धर्म के काम में लगाना, जो बच जाए उसमें से थोड़ा बहुत रति भर, उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, काम की ओ धर्म अर्थ काम, लेकिन वो इच्छा पूर्ति करना जो आपके धर्म के रास्ते पे ले जाए, अधर्म की ओर ना ले जाए. बी माइंडफुल ऑफ इट. वो इच्छा की पूर्ति करना जो आपको धर्म के रास्ते पे ले जाए, अधर्म के मार्ग पे नहीं. इच्छाएं कभी खत्म हुई हैं आपकी? इम्पॉसिबल. एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी पहले आड़े खड़ी होती है, आपको देख रही होती है. इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, इच्छाएं और बढ़ती हैं. इच्छा पे इच्छा, इच्छा पे इच्छा, वही तो वासनाएं हैं. जो जन्म जन्मांतरों तक आपका पीछा करती हैं. और जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक मोक्ष नहीं हो सकता. मोक्ष का मतलब क्या है? लिबरेशन का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपने मरते वक्त भगवान का नाम ले लिया, आप मुक्त हो गए. हालांकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मरते वक्त जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसको मुक्त कर देता हूं, वो मुझ तक पहुंच जाता है. लेकिन मरते वक्त भगवान का स्मरण कैसे होगा? भगवान की याद कैसे आएगी? ये किस लिए आएगी जब पूरी उम्र हमने कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करी? मोक्ष जहां पर मोह का क्षय हो जाए, गेटिंग रिड ऑफ अटैचमेंट्स. आपकी अटैचमेंट है परिवार के साथ, यही तो बात है. अटैचमेंट नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए. अटैचमेंट नीड टू बी कन्वर्टेड इन टू लव. अटैचमेंट दुखदाई है, प्रेम सहारने वाला है, परमात्मा ले जाने वाला है. इसीलिए कहा गया ना, भगवान को पाने के लिए केवल प्रेम ही काफी है. लव फॉर गॉड. रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को तीन बातें बोली थी. क्या था? देव प्रीति, पाप प्रीति, संग नीति. लव फॉर गॉड, फियर ऑफ सिन, मोरालिटी इन सोसाइटी. विचार कीजिएगा आप. जरा सोचिएगा. लव फॉर गॉड, फियर ऑफ सिन, मोरालिटी इन सोसाइटी. हम ये कह रहे हैं कि एक डाकू एक बार साधु को मिलता है, उसका जीवन बदल जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है, वो साधु बन जाता है, वो रामायण की रचना कर देता है, रामायण को लिख देता है, जिसको हम आज भी पढ़ रहे हैं. और हम कितने वर्षों से राम का नाम जप रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर राम का कोई भी कैरेक्टर, कोई भी चरित्र रतिभर नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने राम को समझा नहीं, हमने धर्म को समझा नहीं. हम केवल संसार के पीछे भागते रह गए, संतान की चीजें इकट्ठी करते रह गए, धन संपत्ति कमाते रह गए, धन संपत्ति से अपने मन की इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करने लगे. ना धर्म ठीक है हमारा, ना हमारा कर्म ठीक है. मोक्ष की तो बाहर दूर है, केवल इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं. दैट्स इट. जो इच्छाओं के पीछे भागता है उसको रावण कहा गया है. हमें उसको मारना है. विचार कीजिएगा, उत्तर आपके भीतर से आएगा. और कोशिश करना आपका कर्म है और आपका धर्म है. जय श्री साईं राम.